ओम शांति। इस विश्व नाटक में जब भी धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म का बोलबाला होता है, तब एक दिव्य शक्ति का आगमन होता है और उसके द्वारा इस संसार में जो अनाचार है, जो अत्याचार है, जो अधर्म है, जो विकर्म है, उन्हें रोकने का प्रयत्न किया जाता है। समय समय पर देखा गया है कि विश्व में धर्म स्थापक आए हैं, अवतारों, जिन्हें भारत में अवतार कहते हैं, ऐसे अवतारों का आगमन इस संसार में हुआ है। और जब जब कोई अवतार आया है और जब जब कोई धर्म स्थापक आया है, इस संसार में क्रांति घटित हुई है, अलौकिक क्रांति, आध्यात्मिक क्रांति। तो इस संसार को थमाने के प्रयत्न किए गए हैं, जिसे संसार ने अलौकिक क्रांति कहा है। जब भी क्रांति हुई है, उस क्रांति के साथ समाज में, समाज की व्यवस्था में बहुत सारा बदलाव आया है। अब तक जितनी क्रांतियां हुई है, अब तक जितने रिवॉल्यूशन हुए, जितने विप्लव हुए हैं, उसमें जब भगवान अवतरित होते हैं, तब एक महाक्रांति घटित होती है। और भगवान अकेला नहीं है इस समय, उसके साथ में कौन है? एक अवतार नहीं है, कितने अवतार है उसके साथ? संसार में एक अवतार आ जाता है तो हलचल हो जाती है, सारी समाज की व्यवस्था बदल जाती है। आज समाज रुग्ण है, आज समाज में अव्यवस्था है। ऐसे अव्यवस्थित समाज में, ऐसे विक्षिप्त समाज में, ऐसे समाज को पुनः सुव्यवस्थित करने के लिए जब परमात्मा इस धरा पर अवतरित होते हैं, तो साथ साथ उसके साथ कई सारे अवतार आते हैं, उसके साथ कई सारी आत्माएं आती है जो एक एक धर्म स्थापक है। तो महाक्रांति का आविर्भाव, आध्यात्मिक जागृति, अलौकिक क्रांति, रूहानी जागृति, जहां समाज सो गया है। जागृत किसे करना होता है? जो सोया हुआ है उसे। बुद्ध समाज में आए, उन्होंने जागरण किया। क्राइस्ट समाज में आए, उन्होंने जागरण किया। मोहम्मद पैगंबर समाज में आए, उन्होंने जागरण किया। शंकराचार्य आए, उन्होंने जागरण किया। परंतु जब सब कुछ, सारी व्यवस्था है, निष्काम, निकामी हो जाती है, असफल हो जाती है, तब भगवान का आना होता है। तो तब घटित होती है अलौकिक क्रांति, महाक्रांति, अलौकिक जागृति, रूहानी जागृति। तो आज बाबा हमें क्या बता रहे हैं? रूहानी अलौकिक जागृति की विधि। कौन सी विधि है? कैसे होगी ये विधि, कैसे होगी ये जागृति? बाबा तो पहले किस संगठन को देख रहे हैं आज? ये संगठन कौन सा है? शुभचिंतक। शुभचिंतक की परिभाषा क्या दी बाबा ने? कितनी अच्छी परिभाषा दी, जो शुभ चिंतन में रहे और स्वचिंतन करे। स्व का चिंतन करना, स्व के स्वरूप का चिंतन करना, स्वरूप का, स्वधर्म का, स्वभाव का, स्वदेश का, सब स्व के बारे में सोचना, इसके लिए उसको बाबा ने कहा है शुभ चिंतन। शुभ चिंतक मनिया हमेशा बाबा कहते हैं। तो स्व का चिंतन, शुभ चिंतन, स्वचिंतक संगठन, ऐसे संगठन को बाप दादा आज देख रहे हैं। संसार की सर्वोत्तम आत्माएं, संसार की महानतम आत्माएं, संसार की वो आत्माएं जो संसार में पवित्रता की पुनः स्थापना करने के लिए आई है, ऐसी आत्माओं को भगवान देख रहा है, जिनके हृदय में केवल शुभ चिंतन है, जिनका हृदय विशाल हो गया है, जिसमें प्रेम ही प्रेम भरा हुआ है, केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं, एक परिवार के लिए नहीं, एक समाज के लिए नहीं, एक राष्ट्र के लिए नहीं, बल्कि सार्वभौमिक सारे विश्व के लिए, ऐसी प्रेममयी आत्मा, ऐसी प्रेम पूर्व प्रेममयी आत्माओं को भगवान आज देख रहे हैं। शुभ चिंतन, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, बहुतों का कल्याण करने के लिए जो आई है, बहुतों का हित करने के लिए जो आई है, ऐसी आत्माओं को बाबा आज देख रहे हैं। तो आज की मुरली, फरिश्ता कौन है, फरिश्ता क्या है, फरिश्ता क्यों बनना है, फरिश्ता बनने की विधि क्या है, फरिश्ता कैसे बना जाए, और फरिश्तों की संसार को आवश्यकता क्यों है, आज की सारी चर्चा किस विषय पर है? फरिश्तों के ऊपर, जिनका अंतवाहक शरीर होता है, एंजेलिक बॉडी, सटल बॉडी, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, ऐसे जो फरिश्ते हैं, उनका हम आज, उनकी उपस्थिति संसार में क्यों जरूरी है, वो क्या है, क्यों है, संसार में फरिश्तों की मान्यता है, संसार में ऐसे दो धर्म हैं जहां पर फरिश्तों की सबसे ज्यादा मान्यता है, कौन से, जो बड़े धर्म हैं वो कौन से, एक तो ईसाई और दूसरा इस्लाम, ये दो धर्म हैं जो देवताओं को नहीं मानते परंतु फरिश्तों को जरूर मानते हैं, फरिश्तों के द्वारा ही उन्हें संदेश और सकाश प्राप्त होगा, ये दो धर्मों को। तो सबसे पहला प्रश्न जो है वो कि फरिश्ता क्या है, फरिश्ता कौन सी स्थिति का नाम है, एक तो डबल लाइट, आत्मा इस शरीर में दो शरीरों में विराजमान है, एक स्थूल शरीर जो पंच महाभूत का बना हुआ है, पांच तत्वों का बना हुआ है, और दूसरा एक सूक्ष्म शरीर, एंजेलिक बॉडी, सूक्ष्म शरीर आत्माओं के, आत्मा के संकल्पों के तरंगों के द्वारा निर्मित है, जो भी संकल्प आत्मा करती है उसी के द्वारा निर्मित जो शरीर है उसे सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, एस्ट्रल बॉडी, अलग अलग भिन्न भिन्न नाम दिए गए हैं। तो आत्मा संकल्प कर रही है, उसकी जो तरंग है उससे जो शरीर निर्माण हो रहा है, सूक्ष्म शरीर, लाइट का शरीर, अंतवाहक शरीर, उसे ही आत्मा जब उस शरीर में स्थित रहती है और पांच तत्वों के शरीर से अलग होती है, इस स्वरूप को फरिश्ता कहा जाता है। तो ये फरिश्ता की परिभाषा है। दूसरा प्रश्न है, इस संसार को फरिश्तों की आवश्यकता क्यों है? जैसे हमने दो धर्मों की चर्चा की, उसी तरह बाबा ने बार बार कई सारी मुरलियों में विनाश की घटना का विस्तृत वर्णन किया है। एक तरफ पांच विकार होंगे, दूसरी तरफ पांच तत्व का अति विकराल रूप होगा, तीसरी तरफ तमोगुणी आत्माएं और भक्तों की पुकार, चीखो पुकार होगी, चौथी तरफ पुराने संस्कार। संसार में ऐसा एक तांडव नृत्य होने वाला है। उस समय आत्माएं दुखी होगी, आत्माएं तड़पेगी, पीड़ित होगी, उनको सकाश देने के लिए, उनकी पीड़ा को दूर करने के लिए फरिश्तों की आवश्यकता होगी। और वो जो फरिश्ते हैं वो कौन है? हम हैं, जिनका शास्त्रों में वर्णन है, संसार के कई लोगों ने जिनका अनुभव किया है, वो और तीव्रता से अब अनुभव करेंगे। और वो किसके द्वारा? हमारे द्वारा। तीसरा प्रश्न है, फरिश्ता कैसे बना जाए या फरिश्ता कौन है? किसे फरिश्ता कहेंगे? बाबा ने फरिश्तों की क्या परिभाषा दी है? आज बाबा ने कहा है ना, 10 सूत्री प्रोग्राम कार्यक्रम बनाया है, तो यहाँ कितने सूत्री प्रोग्राम बनाना है? 16। तो हम देखेंगे फरिश्तों की 16 परिभाषाएं, जो कि अति शक्तिशाली परिभाषा है, अति पावरफुल परिभाषा है। सबसे पहले फरिश्ता अर्थात संपूर्ण पवित्र, संकल्प में भी अपवित्रता जहां स्पर्श ना हो। फरिश्ता अर्थात मनसा वाचा कर्मना स्वप्न सब कुछ पवित्र। पवित्रता की श्रेष्ठता चलन और चेहरे से दिखाई दे, स्लोगन है ना आज। व्यर्थ संकल्प को भी बाबा ने अपवित्रता कहा है, उसमें भी समय और संकल्प देना यह भी अपवित्रता है, स्लोगन था अभी अभी। तो पवित्रता फरिश्ता अर्थात संपूर्ण पवित्रता, फरिश्ता अर्थात संपूर्ण निर्विकारिता, विकारों का अंश और वंश भी जहां समाप्त हो जाए। मन में जो भी संकल्प उठ रहे हैं वो महान संकल्प है, मन में जो भी संकल्प आ रहे हैं वो श्रेष्ठतम संकल्प है, और मन जब श्रेष्ठ संकल्पों में विचरण करता है तो स्थिति स्वतः ही ऊंची चली जाती है, व्यर्थ संकल्प स्वतः ही विलीन हो जाते हैं। तो फरिश्ता अर्थात संपूर्ण पवित्र स्वरूप, संपूर्ण निर्विकारिता, ऐसी स्थिति हमें बनानी है कि जिसमें बाबा ने कुछ दिन पहले मुरलियों में कहा था ना, हम विकारों से दूर दूर जा रहे हैं, इतने दूर कि अब उनकी थोड़ी सी छाया भी नहीं है, ऐसी हमारी संपूर्ण पवित्र स्थिति हो। तो फरिश्ता की पहली परिभाषा है फरिश्ता अर्थात संपूर्ण पवित्र, मनसा वाचा कर्मना संबंध संपर्क सब कुछ, संकल्प तक सब कुछ पवित्र। दूसरी परिभाषा फरिश्ता अर्थात सर्व का हितकारी, सर्व का कल्याणकारी, सबके प्रति प्रेम की भावना हो, सबके प्रति प्रेममयी उसका स्वभाव हो, प्रेम उसकी स्टेट ऑफ माइंड हो, सबका कल्याण सबका हित, ऐसी अवस्था, उसका नाम है फरिश्ता। और थोड़ी पावरफुल फरिश्ता अर्थात हल्का, बाबा ने कहा है फरिश्ता अर्थात डबल लाइट, जो डबल लाइट होंगे वही डबल ताजधारी बनेंगे। तो डबल लाइट अर्थात आत्मा स्वयं लाइट एक, और एक मुरली में बाबा ने अलग अलग डबल लाइट की परिभाषा दी है। एक डबल लाइट तो एक मुरली में बाबा ने कहा है कि आत्मा लाइट में स्वरूप में स्थित है, और दूसरा पिछले जो भी हिसाब किताब है उन सबसे हल्की हो चुकी है, मुक्त हो चुकी है, ये डबल लाइट की एक परिभाषा दी है। दूसरा डबल लाइट हल्कापन, दुआए तो आत्मा हल्कापन, आत्मा में हो कोई भी बोझ नहीं, कोई भी भारीपन नहीं, लाइट की अनुभूति, और मन भी लाइट। तो आत्मा जब डबल लाइट स्थिति में स्थित रहेगी तब उसे फरिश्ता कहा जाएगा। और फरिश्ता अर्थात सारे नाते रिश्ते संबंध किसके साथ? एक के साथ। पिछले संडे की मुरली, सफलता के दो आधार, पहला आधार एक से अटूट प्यार, एक बाप दूसरा ना कोई, एक से सर्व संबंध, अगर एक भी संबंध जोड़ो तो क्या कहा था, जादूगरी कौन सी है? एक संबंध, एक भी संबंध जोड़ो तो सर्व प्राप्तियां हो जाएगी, यह जादूगरी है। कल की लास्ट संडे की मुरली, विदेशियों से मुलाकात, खुदा दोस्त, संपूर्ण पूर्ण अनुभवी हो, बाबा ने प्रश्न पूछा था, क्या प्रश्न पूछा था? सर्व संबंधों का प्रीत निभाने का जो अनुभव है वो पूर्ण अनुभव है बाबा से, सर्व संबंध निभाने का, अगर एक भी निभा लो तो सर्व प्राप्तियां हो जाएगी। तो फरिश्ता अर्थात जिसके सर्व रिश्ते एक के साथ, फरिश्ता अर्थात एक बाप से अटूट प्यार, मन में बोल में कर्म में एक बाप ही साथ, ऐसी आत्मा की लवलीन आत्मा होगी। एक शब्द भी कैसा होगा, बाबा शब्द जब बोलेगी तो वो शब्द कैसा होगा, दूसरों को भी स्नेह में बांधने वाला होगा, वो जादू के वस्तु जैसा काम करेगा, रूहानी जादूगर बन जाएंगी ऐसी आत्माएं जिनका प्यार एक परमात्मा से ही है, एक से सर्व रिश्ते हैं, बाकी सारे रिश्ते समाप्त, बाकी सारे संसार के संबंध विच्छेद हो गया है, एक से ही सारे संबंध है। तो फरिश्ता अर्थात जिसके सर्व रिश्ते एक बाप के साथ हो, उसके बाद में फरिश्ता अर्थात बहुत सारी परिभाषाएं फरिश्तों की, तो परमात्मा कार्य में मददगार, परमात्मा कार्य में निरंतर मददगार, हेल्पर्स जिसको कहते हैं ना, संसार में भी एंजल्स आर हेल्पर्स, परमात्मा कार्य में मदद करने वाले। और फरिश्ता अर्थात विश्व को सकाश देने वाले, विश्व को पैगाम देने वाले, विश्व को संदेश देने वाले, मैसेंजर्स। और फरिश्ता अर्थात जिनका हर कर्म कैसा होगा, यादगार होगा, मेमोरियल होगा, हर कर्म योग युक्त, हर कर्म युक्ति युक्त, हर कर्म शक्ति युक्त, जिनका कर्म जिनको खींचेंगे नहीं, अपनी योग शक्ति से क्या करेंगे, कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराएंगे, इसके लिए उन्हें कर्म भोगी नहीं, उन्हें कर्म योगी कहेंगे। परंतु जो कर्म के अधीन होकर, कर्म के वश होकर, कर्म के परतंत्र होकर कर्म करते हैं, अच्छे बुरे कर्म के प्रभाव में आते हैं, वो कर्म भोगी है, परंतु फरिश्ता अर्थात कर्मयोगी, हर कर्म बाप की याद में करने वाले। और फरिश्ता अर्थात हाँ, दो आकर्षण, एक तो हद की सारी आकर्षण से परे, इस संसार में जो कुछ है उन सभी आकर्षणों से परे, उनका प्यार इस संसार से नहीं है, इस संसार के आकर्षणों से नहीं है, इस संसार में वो ऐसे रहते कि जैसे जहां जैसे ये संसार उनके लिए है ही नहीं। बाबा ने कभी अव्यक्तवाणी में ये परिभाषा दी है, एक धर्म स्थापना के कार्य के अतिरिक्त उनका इस संसार में और कोई भी कार्य नहीं। दूसरा फरिश्ता अर्थात जो देह की आकर्षण से परे है, उनका बुद्धि रूपी पाव देह रूपी मिट्टी को कभी स्पर्श नहीं करता, देह रूपी धरनी से सदैव ऊपर रहते हैं। फरिश्ता अर्थात अर्श निवासी, फर्श निवासी नहीं, जो फर्श निवासी है वो कभी तख्त निवासी नहीं बन पाएंगे, फांसी निवासी एक तरफ तो कभी लास्ट संडे ही कहा था ना, अमेरिका ग्रुप ऊपर क्या है, एक तो अतीन्द्रिय सुख, ऊपर तख्त, लास्ट संडे के लास्ट संडे तख्त, और नीचे तख्ता। विदेश में जैसे गलीचा बिछाते हैं लास्ट संडे, माँ बाप अपने बच्चों को तकलीफ ना, उसके लिए कहाँ रखते हैं, ऐसे स्थान पर रखते हैं जहाँ कोई तकलीफ ना हो। तो बाप ने आप सभी बच्चों को कहाँ रखा है, अपने दिल तख्त पर रखा है, ये तख्त केवल अभिसंगम युग पर प्राप्त होता है, इस तख्त पर बैठकर तुम सब कुछ कर सकते हो, इस तख्त से अगर पैर नीचे रखा तो मैले हो जाओगे, इसके लिए सदैव इस तख्त पर विराजमान रहो। जो इस तख्त पर विराजमान है, माया भी उन्हें नमस्कार करती है, नीचे आए, ये शक्तिशाली भोजन है बाबा ने कहा, उसको हजम करते रहो, जो हजम करते रहेंगे कमजोर नहीं होंगे और माया सामना नहीं कर सकेगी। और फरिश्ता अर्थात, तो एक परिभाषा फरिश्ता की, इस देह के आकर्षण से परे, ये देह उन्हें आकर्षित नहीं करेगी, निरंतर अतीन्द्रिय सुख में झूलने वाले, सदा उड़ती कला में, सदा गाने वाले, सदा झूमने वाले, बाबा की आंखों के सामने रहने वाले। और फरिश्ता अर्थात सदा प्रसन्नचित, सदा खुश, संसार में तो दुख ही दुख है, बाबा ने कभी कहा है इस संसार में दुखों की लिस्ट बनाओ, फिर बाबा ने कहा है सतयुग में तुम्हें क्या क्या सुख होगा उसकी लिस्ट बनाओ, कौन सा बड़ा है, कौन सतयुग, फिर एक तीसरी लिस्ट बाबा ने फिर कही है, संगम पर क्या क्या प्राप्ति है अब उसकी लिस्ट बनाओ। तो सतयुग के सारे सुख एक तरफ और संगम युग की प्राप्तियां एक तरफ, कौन सा पलड़ा भारी है? संगम युग की आज भी बाबा ने कहा है, क्या कहा है, सर्व प्राप्तियां उसमें दो, एक तो खजाने और शक्तियां, उसके नशे में रहते हो, किसके नशे में, प्राप्तियां उसमें भी कौन सी, खजाने और सारे शक्तियां, सारी शक्तियां उसके नशे में, और निशाना के स्मृति स्वरूप कौन सा, देवता और संपूर्ण देवता और संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप, और फरिश्ता अर्थात विश्व परिक्रमाधारी अंतवाहक शरीर द्वारा चक्र लगाने वाले, सब जगह चक्र लगाने वाले, अंतवाहक शरीर द्वारा चक्र लगाने वाले। बाबा ने कभी कहा है जो चक्रधारी होंगे वही चक्रवर्ती बनेंगे, जो यहां चक्र लगाएंगे, शरीर स्थूल इधर है परंतु अव्यक्त शरीर द्वारा, सूक्ष्म शरीर द्वारा अव्यक्त अंतवाहक शरीर द्वारा चक्र लगाने वाले, बहुत सारे काम करने हैं हमें अंतवाहक शरीर से। और फरिश्ता अर्थात यहीं पर जीवन मुक्ति की स्थिति में रहने वाले, सतयुग की जीवन मुक्ति नहीं, अभी की संगम युग की जीवन युग मुक्ति में रहने वाले मुक्त, फरिश्ता अर्थात मुक्त, फरिश्ता अर्थात उड़ता पंछी, फरिश्ता अर्थात जिन्हें कोई भी बंधन पसंद नहीं है, पिंजरे से मुक्त रहने वाले, मानसिक कारागृह में भी नहीं, अपने ही संकल्पों के कारागृह में आत्मा बंध जाती है, उससे भी मुक्त, हर चीज से मुक्त, स्वतंत्रता उन्हें अति प्रिय है। तो फरिश्ता अर्थात स्वतंत्र, और फरिश्ता अर्थात अपनी सूरत से बाप की, बाप को प्रत्यक्ष करने वाले, फरिश्ता अर्थात जिनमें बाप दिखाई दे। कभी बाबा ने अव्यक्तवाणी में कहा है कि तुम्हारी सूरत क्या बन जाए, दिव्य दर्पण, जिसमें आत्माओं को बाप दिखाई दे। आज की मुरली में भी है, बाप के कर्तव्य और गुण तुम्हारी सीरत से दिखाई दे। और फरिश्ता अर्थात अभी अभी आया और अभी अभी गया, स्वयं को क्या समझेंगे, जैसे कि मेहमान, जैसे बाप इस तन में रहते हैं वैसे स्वयं को भी इस तन में अवतार समझना, मेहमान समझना, अभी अभी आया, कार्य किया और गायब। और फरिश्ता अर्थात न्यारे और प्यारे, न्यारापन, अभी अभी वरदान में भी कहा था ना बाबा ने, सफलता के दो आधार, एक तो न्यारापन और दूसरा निस्संकल्प स्थिति, शक्तिशाली निस्संकल्प स्थिति, ये दो आधार है प्यारा बनने के। तो फरिश्ता अर्थात न्यारा, डिटैच्ड, अनासक्त, किसी में भी अटका हुआ नहीं, सबसे अलग। और फरिश्ता अर्थात नष्ट मोह, विकारों से मुक्त, जिसमें मोह भी, सब मोह से परे। और फरिश्ता अर्थात ऊंची स्टेज पर रहने वाला, फरिश्ता अर्थात निरंतर योगी, फरिश्ता अर्थात निरंतर सेवाधारी, फरिश्ता अर्थात दूसरा, फरिश्ता अर्थात पुण्य आत्मा, फरिश्ता अर्थात बड़े से बड़ी सेवा करने वाला, बड़े से बड़ा पुण्य करने वाला, दूसरों को दुखों से मुक्त करने वाला, दुख लेकर सुख देने वाला, सुख करता और दुख हरता, ये फरिश्ते की परिभाषा है। और फरिश्ता अर्थात वरदानी मूर्त, सबको वरदान देने वाला, भरपूर करने वाला, संपन्न बनाने वाला, संतुष्ट करने वाला, ऐसा जो है वो फरिश्ता है, वरदानी मूर्त। और साक्षात्कार मूर्त और साक्षात मूर्त, बाबा ने कभी कहा है तुम्हारा जब फरिश्ता स्वरूप आत्माओं को दिखेगा तो तुम्हारे मस्तक पर मणि चमकता हुआ दिखेगा, तुम्हारी आंखों में ज्वाला दिखेगी और तुम्हारे मुख के वरदान उनको सुनाई देंगे। ये तीन स्वरूप बाबा ने एक अव्यक्त वाणी में कहा हुआ है। और फरिश्ता अर्थात साक्षी दृष्टा उपराम इस संसार के क्रियाकलापों से परे, यहाँ की कोई बातें उसे प्रभावित नहीं कर रही है। उपराम स्थिति बहुत ऊंची स्थिति अब अध्यात्म की, सर्वोच्च अवस्था है साक्षी भाव, उपराम भाव, अनासक्त भाव। और फरिश्ता अर्थात देहभान, वो तो देह रूपी मिट्टी से परे, और उनके वाइब्रेशन से ब्लिस और हैप्पीनेस का अनुभव हो, वरदानी मूर्त। और फरिश्ता अर्थात इंडिपेंडेंट स्वतंत्र, और फरिश्ता अर्थात आज की मुरली से आध्यात्मिक जागृति करने वाले, फरिश्ता अर्थात बाप को प्रत्यक्ष करने वाले, ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले। फॉलो करना अर्थात ये नहीं कि क्या शरीर छोड़कर अव्यक्त हो जाओ, फरिश्ता अर्थात ये नहीं कि केवल ईश्वरीय सेवाधारी बन गए। फरिश्ता अर्थात बाप को फॉलो करना अर्थात किसको फॉलो करना, हर कदम और हर संकल्प। कदम अर्थात क्या, कदम अर्थात संकल्प, कदम अर्थात बोल, कदम अर्थात दृष्टि वृत्ति कृति स्वभाव संस्कार सब कुछ। जैसे उसका दिव्य है तुम्हारा भी दिव्य, जैसे वो जैसे बाप वैसे बच्चे, तो सब में दिव्यता आ जाए। ईश्वरीय स्वभाव, ईश्वरीय संस्कार, दिव्य स्वभाव, सब कुछ दिव्यता से परिपूर्ण हो जाए, वह है बाप को, ब्रह्मा बाप को फॉलो करना। तो फरिश्ता अर्थात बाप को फॉलो करने वाले, फरिश्ता अर्थात बाप समान, और फरिश्ता अर्थात आज की मुरली से शुभ चिंतक। फरिश्ता अर्थात शुभ चिंतक, फरिश्ता अर्थात स्वचिंतन में रहने वाले, फरिश्ता अर्थात जो नशे में है। कौन सी नशा, कौन सा नशा, प्राप्तियों का नशा और खजानों का नशा और शक्तियों का नशा। तो जो नशे में जो आत्मा है वह फरिश्ता स्थिति में, वो हर अवस्था जो इस शरीर से परे की स्मृति में है वो फरिश्ता स्थिति है। और फरिश्ता अर्थात व्यर्थ मात्रम अविद्या, आज की मुरली में जैसे ब्रह्मा बाप के व्यर्थ संकल्प उत्पन्न नहीं होते वैसे उनके भी कोई व्यर्थ से व्यर्थ संकल्प नहीं होंगे, शूद्रपन का कोई भी संस्कार नहीं, आज कहा है ना प्रश्न उत्तर में। तो फरिश्ता अर्थात शूद्रपन का कोई संस्कार नहीं, और फरिश्ता अर्थात अमृत वेले से रात तक क्या मर्यादाओं पर चलने वाले, नियम मर्यादा श्रीमत। फरिश्ता अर्थात जिसे ये पता है श्रीमत क्या है, मनमत क्या है और परमत क्या है, इन तीनों को अलग करना। और फरिश्ता अर्थात इच्छा मात्रम अविद्या, कभी बाबा ने कहा है फरिश्तों का काम क्या होगा, संसार की आत्माओं की इच्छाओं को पूर्ण करना। संसार की आत्माओं की इच्छा वही पूर्ण कर सकते जो स्वयं इच्छाओं से मुक्त है, जो स्वयं इच्छाओं में डूबे हुए हैं, जिन्हें अभी भी संसार के सुख सुविधा और साधनों में डूबे हुए और उसमें उसकी प्राप्ति में ही लगे हुए हैं, वो कभी संसार की आत्माओं की इच्छाओं को पूर्ण नहीं कर सकेंगे। हमें आध्यात्मिक क्रांति लानी है जगत में, महान कार्य है। तो फरिश्ता अर्थात और भी कोई परिभाषा है फरिश्तों की, अव्यक्त वतनवासी। वैसे तो फरिश्तों की असंख्य परिभाषाएं बाबा ने दी है, अव्यक्त वतनवासी। अब स्वयं को अव्यक्त वतनवासी समझना, इस संसार में सबसे पावरफुल जो स्थान है वो कौन सा है, परमधाम। अगर किसी को शक्तिशाली बनना है तो ज्यादा से ज्यादा समय वहां रुकना पड़ेगा, जितना ज्यादा समय ऊपर जो आत्मा रुकेगी वो उतना ज्यादा शक्तिशाली होगी, चाहे परमधाम चाहे सूक्ष्म वतन। तो फरिश्ता अर्थात सूक्ष्म वतनवासी, और फरिश्ता अर्थात सदा बाप के साथ कंबाइंड, बाप के साथ पार्ट बजाने वाली, निश्चय बुद्धि। आज बाबा ने कहा है, चलो आज की मुरली पे आ जाओ अभी, निश्चय। जैसे तुम्हें निश्चय है, जैसे तुम्हारे सामने स्पष्ट है, जैसे तुम्हें अनुभव होता है कौन सा स्वरूप तुम्हारा, ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी का स्वरूप, इसमें कोई हां ना नहीं है, असंदिग्ध है ये। कोई कुछ भी पूछे, बाबा ने विदेशियों को पूछा ना, कितने सारे प्रश्न पूछे, 5-6। कोई अगर तुमसे कहो कि तुम ब्रह्मा कुमार कुमारिया नहीं हो, भारत में जो है वो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी है, जो महारथी है वो ब्रह्मा कुमार कुमारी है, तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी कैसे हो सकते हो, तुम तो क्रिश्चियन कुमार, गलती से क्रिश्चियन कुमार कुमारी के बजाय ब्रह्मा कुमार कुमारी कहते हो स्वयं को, तो मानेंगे नहीं मानेंगे ना, बाबा ने पूछा है प्रश्न। भारत का ब्रह्मा है, तुम नहीं हो, तो क्या कहेंगे? अरे हम कोई अब के नहीं है, क्या कहेंगे? हम तो अनेक कल्पों से है, कल्प कल्प से है। तो यह निश्चय कितना स्पष्ट है, बाबा ने कहा। निश्चय कैसा है? स्पष्ट है, समीप अनुभव होता है और अनुभव में है, इसमें कोई दो राय नहीं है, दो मत नहीं है, इतना स्पष्ट है ये। वैसे ही संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप, वो भी इतना ही समीप हो, स्पष्ट हो और अनुभव में हो। जैसे कि मेरा फरिश्ता स्वरूप सामने से आ रहा है और आंखों के सामने है और मुझ में समा रहा है, इस तरह के हमें अभ्यास करने अलग 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 अलग, जिस स्वरूप जो हमारा स्वरूप है उसमें संपूर्ण स्थित रहना, लंबा समय उसी के चिंतन में रहना, लंबा समय ज्ञान के ही चिंतन में रहना, लंबा समय ज्ञान को बार बार स्मरण करना, तो स्वतः ही चिंतन चलेगा और स्वतः ही आत्मा देहवान के संकल्प है उससे ऊपर रहेगी। तो यहां निश्चय के लिए बाबा ने कहा है, जैसे वो निश्चय है वैसे ये भी निश्चय हो। और फिर कहा जैसे फरिश्ता जो है उसके दृष्टि वृत्ति कृति और सेवा का स्वरूप क्या होगा, और सेवाओं के बाद बाबा ने कहा अब तक तो जो साकारी रूप की एक सेवा है, एक आकारी रूप की सेवा है, एक पुरुषार्थी स्वरूप की सेवा है, एक फरिश्ता स्वरूप की सेवा है, एक वाचा की और कर्मणा की सेवा है और दूसरी मनसा की सेवा है। मनसा की सेवा की रफ्तार तेज है, अव्यक्त की रफ्तार ज्यादा है, तेज है, तीव्र है, स्पीड उसकी ज्यादा है इससे, और ये दूर दूर तक जाती है। आगे तो बाबा ने कहा इसका प्लान बनाओ, वो सब बातें हैं, परंतु यहां पर बाबा ने ब्रह्मा बाबा का उदाहरण दिया है कि ब्रह्मा बाबा ने दोनों ही सेवा की, साकारी और आकारी। ब्रह्मा अव्यक्त क्यों हुए, फिर से इसका उत्तर दिया बाबा ने, क्यों? क्योंकि विश्व के सामने एग्जाम्पल बनना था सहज फॉलो करने के लिए। और विदेशियों का फिर से उदाहरण दिया बाबा ने कि जब बाबा के कमरे में जाते हो तो क्या देखते हो, बाबा के कमरे में क्या करते हो, रूरियान करते हो, चित्र देखते हो या चैतन्य देखते हो, क्या देखते हो? इसके लिए तो जिगर से कहते हो ब्रह्मा बाबा, वो केवल ज्ञान के आधार से कहते हो या अनुभव के आधार से कहते हो, किस आधार से कहते हो? यहां बाबा ने मधुबन की बात की है। मधुबन में केवल बाबा के कमरे में नहीं, परंतु हर स्थान पर, हर जगह यह अनुभव होता है, क्योंकि मधुबन है बाप की कर्म भूमि, कर्मातीत भूमि, कर्तव्य भूमि, यादगार भूमि, तपस्या भूमि, परिवर्तन भूमि, चरित्र भूमि है। इसके लिए यहाँ का हर कोना, हर जगह अव्यक्त की स्मृति दिलाती है। बाबा ने फिर भी कहा कि ब्रह्मा बाबा क्या किस लिए खींच रहे हैं सबको, स्वयं अव्यक्त रूपधारी बने, स्वयं अव्यक्त फरिश्ता बने, किस लिए? सब बच्चों को भी अव्यक्त फरिश्ता बनाने के लिए खींच रहे हैं। साकार अव्यक्त है, परंतु भासना कहाँ की दे रहे हैं? साकार की। साक्षात्कार कहाँ का करा रहे? साकार का। तो वैसे तुम भी व्यक्त में रहते भी अव्यक्त रहो। फिर बाबा ने दो प्रकार की सेवाओं की बात की है कि ये दो प्रकार की सेवाएं करो तो संसार में क्या हो जाएगा। एक तो हमने देखा ये सेवा क्यों करनी है, क्योंकि संसार की आत्माएं दुखी है, समय की आवश्यकता अनुसार कहा, और आत्माओं की आवश्यकता अनुसार ये दो प्रकार की सेवाएं करनी है, क्योंकि संसार में दुख बढ़ रहा है, संसार में अशांति बढ़ रही है, और कोई भी मनुष्य किसी को भी शांत नहीं कर सकता, ये कार्य हमारा है। तो ऐसा समय आएगा कि क्या होगा, आध्यात्मिक क्रांति किसे कहा बाबा ने, जागृति, चारों तरफ क्या होगा, चारों तरफ फरिश्ते ही फरिश्ते नजर आएंगे, जहां देखो वहां पर फरिश्ते ही फरिश्ते, जैसे बादल चारों ओर छा जाते हैं वैसे चारों ओर कौन छा जाएगा, फरिश्ते ही फरिश्ते, फरिश्तों की मंडली, फरिश्तों की टोली, जहां देखो वहां झील पर, समुन्दर पे, आसमान में, सब जगह फरिश्ते ही फरिश्ते, इंग्लैंड, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, हर देश में क्या हो जाएगा, फरिश्ते ही फरिश्ते, जैसे कि फ्लाइंग सॉसर, उड़न्तश्तरी, लोग क्या करेंगे देखकर, क्या कहेंगे, कौन है ये, क्या है ये, कहां से आए, रिसर्च करेंगे, ढूंढेंगे, कौन है ये, वही आत्मा परमात्मा वाले जो आत्मा परमात्मा का ज्ञान सुनाते थे, ओम शांति वाले, कहेंगे ये वही ब्रह्मा कुमार और कुमारी है, जैसे अभी कहते हैं ये श्वेत वस्त्रधारी, सफेद वस्त्रधारी, कौन है, कहां से आए, तब कहेंगे ये है वो फरिश्ते। चारों तरफ फरिश्तों की धूम मचेगी। बाबा ने कहा अनोखी हलचल मचाओ, धूम मचाओ, ये वही है भाई बहन बनाने वाले ये वही है जो हमेशा कहते चलो माउंट अबू, चलो माउंट अबू आएगा परिवर्तन, आना ही है, हर एक के दिल से निकलेगा मेरा बाबा, बाबा ने कहा हुआ है ये, एक समय ऐसा आएगा। लास्ट संडे की मुरली में भी यही कहा था, ज्ञान सूर्य और ज्ञान सितारे प्रकट हो जाएंगे, ज्ञान सितारों की रिमझिम चारों ओर दिखाई देगी, ये प्रत्यक्षता का समय जो होगा, संगम युग का स्वर्णिम समय होगा, जो चारों ओर संसार में जैसे कि पता चल जाएगा कि भगवान इस धरा पर आ चुका है, और सबको यहां आना ही है। जब मधुबन में ऐसा हो, यहां बाबा ने कहा है ना यहां भीड़ लग जाएगी, ऐसा प्रत्यक्षता का समय आने वाला है, और ये कार्य होगा किसके द्वारा, हमारे द्वारा होगा, किसके द्वारा, जो फरिश्ते स्थिति में स्थित है। अशरीरीपन का अभ्यास, कल का स्लोगन याद है ना, अशरीरीपन का अभ्यास, और अशरीरपन का अभ्यास और आगे नंबर लेने का क्या है, साधारण आधार है। तो बाबा ने एक चित्र आज हमारे सामने खींचा है कि संसार में ऐसा समय आएगा जहां चारों तरफ फरिश्ते छा जाएंगे और संसार के लोग अचंभित हो जाएंगे, और उन्हें फिर पता चलेगा जब देखेंगे नीचे उतर रहे, साक्षात्कार करा रहे, तो पता चलेगा कि ये वही ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी है, तब संसार में परमात्मा प्रत्यक्षता होगी, ये आधार बनेगा प्रत्यक्षता का। तो उसकी तैयारियां हमको अभी से करनी है, अभी से ही ज्यादा से ज्यादा। इसके लिए बाबा ने कहा ना अमृत वेले क्या करो, शरीर से डिटैच होने का अभ्यास करो। अभी प्रश्न ये है कि हमें अंतवाहक शरीर द्वारा क्या क्या करना है। बाबा ने आज कहा अंतवाहक शरीर द्वारा चक्र लगाओ, इसका अभ्यास करो, यह अभ्यास बहुत जरूरी है। तो अंतवाहक शरीर द्वारा क्या क्या करना है, क्या क्या करेंगे, भक्तों की आशाएं पूर्ण करनी है, भक्तों को साक्षात्कार कराना है। दुखी आत्माओं को सुखी करना है। संसार में आत्माएं बहुत दुखी है, अपने ही कारण दुखी है, जिसका दोष वो दूसरों पर डाल रही है, अपने ही संस्कारों से दुखी है, अपने ही संकल्पों से दुखी है, अपने हिसाब किताब की वजह से दुखी है, अपने ही प्रवृत्ति के विस्तार की वजह से दुखी है। तो दुखी आत्माओं को सुखी करना ये अंतवाहक शरीर द्वारा हमें करना है। एक दूसरा क्या करना है अंतवाहक शरीर द्वारा? आध्यात्मिक शक्ति की जागृति, जो निर्बल आत्मा है उनमें बल भरना है, उनके हर आत्मा के मन में परमात्मा प्रेम बस भर देना है। जो नास्तिक भी है, ऐसी आत्माएं जो भगवान पर विश्वास ही नहीं है जिनका, ऐसी आत्माओं के हृदय में भी वह विश्वास, वह आस्था, वह निश्चय पैदा कर देना है, ताकि ढूंढते ढूंढते यहां तक पहुंच जाए। तो सभी आत्माओं के हृदय में परमात्मा प्रेम की स्थापना करनी है, यह अंतवाहक शरीर द्वारा करने वाला कार्य है। और क्या करना है हमें अंतवाहक शरीर से? भटकती हुई आत्माओं को ठिकाना देना है। और क्या करना है? प्रकृति के पांचों तत्व को शांत करना है। ये हमारी सबसे बड़ी एक सेवा है। रोज कम से कम 24 घंटे में दो बार ये कार्य करना है, प्रकृति के पांचों ही तत्वों को सकाश देना, ग्रह को सकाश देना, सूरज, चांद, सितारे, बादल, आसमान, वायु, भिन्न भिन्न देश के ऊपर जाकर उन देशों को सकाश देना, समुन्द्र के ऊपर जाकर उस जल को सकाश देना, अग्नि को सकाश देना, ये सारे कार्य अंतवाहक शरीर द्वारा हमें करने हैं। इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर है। और क्या करना है? योग अग्नि द्वारा भस्म करना है विकारों को। और शरीर द्वारा यहां से उठकर जाकर संसार में क्या करना है? बीमार आत्माओं को सकाश देनी है, जो रुग्ण है, मानसिक बीमारियां जिनको है, ऐसी आत्माओं को भी पवित्रता की किरणें देनी है, उनकी पीड़ा का शमन करना है, उनके दुखों का नाश करना। और जो अशांत आत्माएं हैं संसार में, भटक रही है अशांति की वजह से, ऐसी आत्माओं के चित्त को शांत करना है। और क्या करना है? ये कार्य रोज करने हैं, सुबह शाम, एक अमृत वेले और एक शाम को। आज कहा ना बाबा ने वरदान में, अमृत वेले शक्ति भरनी है स्वयं में, ताकि दिन भर फिर सहज योगी का अनुभव हो, कोई बात मुश्किल ना लगे। और क्या करना है? फरिश्तों के कार्य क्या क्या है? सकाश में ही क्या क्या? एक सकाश, दूसरा संदेश, जो दूसरे धर्म की आत्माएं हैं उन्हें साक्षात्कार कराना है, उनका आह्वान करना है, क्या बात करनी है उनसे। बाबा ने कहा है अमृत वेला आत्माओं से रूरियान करो, आत्माओं से बात करो। हे आत्माओं क्या कहो उनसे? जागो, जागरण की वेला है, आ जाओ, अपना वर्षा ले लो। और क्या कहो उनसे? भगवान आया है तो क्या, उसको पहचान लो। और क्या कहो? थोड़ा समय बाकी है, आ जाओ। और क्या कहो? प्राप्तियों से झोली भर लो, ज्ञान रत्नों से झोली भर लो, संसार में आत्माएं भिखारी है, विपन्न है, उन्हें संपन्न बना दो। और क्या करना है अंतवाहक शरीर द्वारा हमें? ये सारे कार्य हमें बुद्धि में रखने हैं, ताकि ये सुबह और शाम दो बार तो बैठकर अंतवाहक शरीर द्वारा ये दो कार्यों को करना है डेली। और भी कुछ करना है? तड़पती हुई आत्माएं, भटकती हुई आत्माएं, प्रेत आत्माएं उन्हें भी सकाश देनी है, मास्टर सर्वशक्तिमान की सम्मान में स्थित होकर। और हाँ वही, तो ये सारे कार्य फरिश्तों के कार्य है। तो फरिश्ता कौन है? फरिश्ता किसे कहेंगे? फरिश्ता के कर्तव्य क्या है? क्या मैं वो सारे कर्तव्य कर रहा हूँ? इसकी चेकिंग हमें करनी है। फिर बाबा ने टीचर्स बहनों से भी और कुछ दूसरी एक दो बातें कही। वो कौन सी कही? वो सदा कैसी आत्माएं हैं? भरपूर आत्माएं हैं। और अभी सेवा की गति का विस्तार तीव्र है। क्यों? क्योंकि संगम पर ही क्या होने वाला है, त्रेता तक की आत्माएं, प्रजा जो है, रॉयल फैमिली जो है, और तीसरी इस धर्म की जो आत्माएं हैं, वो सबको तैयार यहीं पर होने वाली है। इसलिए और टीचर्स बहनों को क्या कहा बाबा ने, थोड़ी महिमा की बाबा ने टीचर्स की, अच्छी सेवा की है, जो साकार रूप में सेवा की है उसकी भी बाबा ने महिमा की, परिणाम अच्छा है, यथाशक्ति सेवा की है, कर रहे हो कि कर रहे और करते रहेंगे। फिर उसके बाद अभी हमें एक, जैसे कहा ना वो 10 सूत्री प्रोग्राम था, तो यहाँ पर 16 सूत्री प्रोग्राम हमें बनाना है, एक कार्यक्रम। फरिश्तों की परिभाषा तो हमने देख ली, परंतु अभी हमें क्या करना है, ऐसा कौन सा प्रोग्राम बनाएं। अभी ये वर्ष समाप्त होने वाला है, नया वर्ष आने वाला है, अव्यक्त मास आने वाला है, अपने लिए ऐसा कोई एक दिव्य पुरुषार्थ का प्लान बनाना है। जब तक प्लानिंग नहीं होगी तब तक स्थिति श्रेष्ठ नहीं हो सकती। तो अभी ये बताओ कौन सा 16 सूत्री प्रोग्राम बनाएंगे। 16 तो छोड़ो, 6 भी बना दिए तो बहुत है। ऐसा कौन सा प्लान हम बनाएंगे कि जिसके वजह से हमारी स्थिति शक्तिशाली हो जाए, जिसके वजह से बाबा जो कह रहे हैं कि मनसा सेवा का जो प्लान है, मनसा सेवा को पावरफुल कैसे बनाए, इसका विशेष प्लान बनाओ, वो कैसे करें, अभी इसके ऊपर एक 5-10 मिनट और चर्चा करेंगे। पढ़ाई, अब पढ़ाई जैसे लास्ट संडे की मुरली में कहा, सफलता के दो आधार में दूसरा आधार था ज्ञान की हर पॉइंट का अनुभवी मूर्त। तो रोज की जो मुरली है वो शक्तिशाली भोजन है। उस मुरली से 1-2 ऐसे शक्तिशाली पॉइंट्स हमको निकालने हैं जो कि अति नशे वाले पॉइंट है। जैसे कभी एक नशे वाला पॉइंट बाबा ने कहा है, अगर तुम बाप की याद में मगन हो तो तुम्हारे लिए सोचने का काम भी बाप करेगा। देखो कितनी नशा वाला और कितना शक्तिशाली पॉइंट है। इस तरह से जो पॉइंट्स आते हैं वो वहां से निकालना है। दूसरी और एक महत्वपूर्ण बात, जो भी चीज हम याद करने की कोशिश करते हैं, स्मरण में रखने की कोशिश करते हैं, तो स्वतः ही उसका चिंतन चलता है। जब तक हम याद रखने की कोशिश नहीं करेंगे चिंतन नहीं चल सकता। इसके लिए केवल मुरली पढ़ना और मुरली लिखना यहां तक सीमित ना हो, परंतु याद रखना है पॉइंट्स। याद कैसे रखेंगे? बार बार पढ़ने से, बार बार रिपीट करने से, बार बार दूसरों को सुनाने से, बार बार उसकी चर्चा करने से। जब तक ये कार्य ना किया जाए तब तक हम उसे याद नहीं रख सकेंगे। याद रखने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसी में स्वतः ही हमारा चिंतन उस ज्ञान के लिए होगा। इसके लिए मुरली पढ़ना, याद रखना, चर्चा करना, सुनाना। बाबा ने कभी अव्यक्त वाणी में कहा है कि मुरली की चर्चा करना ये ब्राह्मणों का कर्तव्य है। इसके लिए मुरली की चर्चा करना अतीव आवश्यक है। तो ये एक बात, तो मुरली को ध्यान से पढ़ना, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करना, जो वरदान और स्लोगन है उसको बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ना। अगर मुरली को पढ़ने को आधा घंटा लगा रहे हैं तो वरदान और स्लोगन पढ़ने के लिए 1 घंटा। एक एक लाइन पढ़ना, चिंतन करना, स्मरण में रखना और फिर सुनाना। जब तक ये कार्य नहीं होगा वो चिंतन नहीं चलेगा, और जैसे ही ज्ञान का चिंतन चालू होगा व्यर्थ स्वतः ही विसर्जित हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो ये एक काम करना है। दूसरा काम, उसके लिए प्रैक्टिकल क्या प्लान करेंगे? स्वमान का अभ्यास, उठते ही एक पावरफुल स्वमान लेना, उसका भिन्न भिन्न समय पर अभ्यास करते रहना, दिन भर बार बार एक स्वमान को रिपीट करना, उसका अभ्यास करना, उसका विस्तार करना, उसके बारे में लिखना, जो लिख सकते हैं एक ही स्वमान का विस्तार करो, उसे भिन्न भिन्न शब्दों में लिखो, एक ही चीज को ताकि वो बुद्धि में अच्छी तरह से बैठ जाए। तो स्वमान का अभ्यास, तीसरा आत्मिक दृष्टि का अभ्यास। ये सब वही बातें, नई बातें कुछ भी नहीं है, परंतु वही वही रिपीट करने की आवश्यकता है। सभी को बार 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 आत्मा देखना, केवल आत्मा नहीं, देवकुल की महान आत्माएं देखना, श्रेष्ठ आत्माएं देखना, अवतार देखना, महान आत्माएं देखना, ये एक अभ्यास, तो आत्मिक दृष्टि का अभ्यास। चौथा, सेवाओं में स्वयं को बिजी रखना, चाहे स्थूल सेवा हो, चाहे सूक्ष्म सेवा हो, चाहे वाणी की सेवा हो, किसी न किसी रूप से स्वयं को बिजी रखना। तो अभी एक सेकंड में इस शरीर को भूलकर अंतवाहक शरीर का आधार लेकर चले अंतरिक्ष में, आकाश में, पांचों तत्वों को सकाश देंगे और विश्व की सर्व आत्माओं को सकाश देंगे। एक दूसरा और एक प्लान है, जो है कि 69 की सारी जो मुरलियां है, जैसे हम लोगों ने एक लक्ष्य रखा है फिर से कि उन्हें सब फिर से रिवाइज करनी है, पूरा जनवरी मास 1 तारीख से लेकर तो 31 तारीख तक पूरी जो मुरलियां है 69 की, एक बार फिर से पढ़ना, रिवाइज करना उनका, तो ये भी एक प्लान हो सकता है। और क्या करेंगे प्लानिंग में, हर घंटे तो कभी कभी मुश्किल हो जाता है, परंतु स्वयं की बार 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 चेक करना, स्वयं को चेक करना। और दूसरा, हमारा जो योग का चार्ट है उसको थोड़ा बढ़ाना है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण चलते फिरते तो कर ही रहे, परंतु बैठकर जो योग का चार्ट है, बाबा के कमरे में बैठकर जो चार्ट है उसको भी बढ़ाना है। वो अगर 1 घंटा है तो 1.5 घंटा, 1.5 घंटा है तो 2 घंटा, 2 घंटा है तो 3 घंटे तक, और 3 है तो 4 तक लेके जाने का अभ्यास करना है। वैसे हम सभी कर्मयोगी है, कर्म करते हुए योग करना है, उसके बाद भी कुछ स्पेशल अलग से टाइम निकालकर अमृत वेला जैसे करते हैं वैसे नुमा शाम का जो योग है वो कभी मिस ना हो, और दिन भर में भी बीच बीच में बाबा के कमरे में जाकर बैठकर बाबा को अपना मन की जो स्थिति है वो सुनाना, या अशरीरीपन का अभ्यास करना, रूहरियान करना, संबंधों की अनुभूति करना, ये सारे कार्य साथ साथ चालू रहे। और भी कुछ कर सकते हैं प्लानिंग में, कोई भी जो दिव्य गुण है उनको लेकर एक सबसे अच्छा अभ्यास है लिखना, रोज कोई भी एक टॉपिक लेकर उस पर लिखना। और एक बात है, बाबा ने हमेशा कहा है चार्ट लिखो, अब चार्ट कुछ दिन लिखते हैं फिर छूट जाता है, एक दूसरा एक पर्याय जो है अपनी रोज की डायरी लिखना, रोज की डायरी लिखना, सुबह से लेकर रात तक हमने क्या किया, दिनचर्या लिखना। संसार की कई महान आत्माएं वो सभी को ये अभ्यास था, अपनी दिनचर्या लिखते थे। अब दिनचर्या लिखते लिखते धीरे धीरे उसमें फिर चार्ट भी डालते जाओ, तो रोज डायरी लिखना रात में हमने क्या क्या किया सुबह से लेकर तो रात तक, ये भी एक बहुत अच्छा अभ्यास है। और फिर धीरे धीरे इसको और सूक्ष्म बनाते जाए। तो योग हमारा जितना हो सके योग का चार्ट बढ़ाना है, ज्ञान का चिंतन बढ़ाना है, और अभी जो अव्यक्त मास आ रहा है उसमें 69 की जितनी मुरलियां है, 40, 41, 42 लगभग, कितनी टोटल 42 जो मुरलियां है उसमें एक मुरली में संदेश है 13, वो सारी मुरलियां एक बार हम फिर से रिवाइज करें, ये एक महान संकल्प लेना है और वो एक मास में हमें पूरा करना है। व्यक्तिगत, संगठन में करें तो बहुत अच्छा, परंतु व्यक्तिगत खुद से पढ़ना है, ठीक है। 69 ओम शांति।